अंतस्थल का पूरा विप्लव अंधेरे में। निर्मला जैन। अंधेरे में उत्तर शती की सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे विवादास्पद कविता है। विवाद भिन्न रुचि और विचारधारा वालों के बीच ही नहीं, समान धर्मा आलोचकों के बीच भी है। यह तथ्य कविता की संभावनाशीलता का प्रमाण है। यह भी सही है कि मुक्तिबोध के जीवन काल में इस कविता को खुद उनसे सुना तो बहुतों ने होगा। कोष्टक में चांद का मुंह टेढ़ा है कि भूमिका में शमशेर बहादुर सिंह ने भी राज नांद गांव में 1961 में इस कविता को उनके मुख से सुनने का जिक्र किया है। कोष्टक बंद। लेकिन इसे सराहा उनकी मृत्यु के बाद ही गया। इस विलंब का कारण उपेक्षा या उदासीनता नहीं बल्कि ऐतिहासिकता है। 1960 के बाद भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों की गति और विधि दोनों में निकट अतीत से ही बुनियादी अंतर था। स्थितियां जिस तेजी से और जिस रूप में मोड़ ले रही थीं, उन्हें देखते हुए बहुतों को मुक्तिबोध की क्रांतिदर्शिता और शोध की पहचान करना और सराहना जरूरी महसूस हुआ होगा। इस ऐतिहासिक दबाव का जो सिलसिला उस समय शुरू हुआ था वह आज भी कायम है। अपने समय का अतिक्रमण कर हर कालजयी रचना में होता है, लेकिन आने वाले समय के इस कदर साथ चलने वाली रचनाओं की संख्या बहुत नहीं होती। इस दृष्टि से देखने पर यह बात हैरत में डाल देने वाली है कि अपने सारे जटिल अर्थविन्यास और अपारदर्शी शिल्प के बावजूद इस कविता के पाठकों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई है। मुक्तिबोध जिन कविताओं को किसी समय लगभग अबूझ और अभेद्य मानकर किनारे रख दिया जाता था, उन्हीं में धीरे धीरे पाठकों को साथीपन का एहसास होने लगा। निजी सोच में सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक विचारों का इतनी दूर तक सीधा सीधा हस्तक्षेप औसत आदमी ने पहले इस हद तक झेला भी नहीं था। ऐसा हस्तक्षेप जिसने उसके लिए नए सिरे से अपनी पहचान को तलाशने और व्याख्यायित करने की मजबूरी पैदा की। बाहर के जीवन जगत का दबाव मुक्तिबोध की कविताओं पर कुछ इस कदर दिखाई पड़ा कि लोगों को उनकी कविता के द्वारा सार्वजनिक दुनिया और राजनीतिक विचारों का पुनर्वास होता दिखाई पढ़ने लगा, मानो इससे पहले के दौर में वे प्रवासी या अनुपस्थित रहे हों। अपनी तमाम कविताओं में मुक्तिबोध फैंटेसी शिल्प के माध्यम से पूरी तरह अपने समय के साथ है। अंतर और बाह्य के इस रिश्ते को मुक्तिबोध ने दुःस्थिति के रूप में अनुभव किया है। तार सप्तक के पहले संस्करण के वक्तव्य में ही उन्होंने इस संबंध की बनावट के बारे में कहा था। यहाँ यह स्वीकार करने मुझे संकोच नहीं कि मेरी हर विकास स्थिति में मुझे घोर असंतोष रहा है। मानसिक द्वंद्व मेरे व्यक्तित्व में बद्धमूल है। यह मैं निकटता से अनुभव करता आ रहा हूँ कि जिस भी क्षेत्र में मैं हूँ वह स्वयं अपूर्ण है और उसका ठीक ठीक प्रकटीकरण भी नहीं हो रहा है। फलतः गुप्त अशांति मन के अंदर घर किए रहती है। 20 वर्ष बाद जब तार सप्तक के दूसरे संस्करण की तैयारी हो रही थी, तब इस अंतराल के बीच होने वाले अनुभव ने उन्हें यह समझा दिया था कि व्यक्ति स्वातंत्र की वास्तविक स्थिति केवल उनके लिए है जो स्वातंत्र का प्रयोग करने के लिए सुपुष्ट आर्थिक आधार रखते हों, जिससे कि वे परिवार सहित मानवोचित जीवन व्यतीत कर सकें और साथ ही व्यक्ति स्वातंत्र का ऐसा प्रयोग भी कर सकें जो विवेकपूर्ण और लक्ष्योन्मुख हो। पुनश्च पृष्ठ 75। यही उन्होंने व्यवसायीकरण व्यापारीकरण के मार्ग के बढ़ते दबाव और इस मार्ग के अनौचित्य का भी जिक्र किया है। अंधेरे में का रचना काल भी यही है। अतः क्या यह निष्कर्ष निकालना उचित न होगा कि रचना कर्म के इस दौर का संघर्ष मुक्तिबोध के लिए सुपुष्ट आर्थिक आधार के अभाव या अपर्याप्तता के कारण व्यक्ति स्वातंत्र के विवेकपूर्ण और लक्ष्योन्मुख प्रयोग की असमर्थता का संघर्ष है। कवि के चारों ओर एक वास्तविकता है, सामाजिक परिदृश्य है, राजनीतिक दुनिया है। उसकी कठिनाई इस भयानक दुःस्वप्न सरीखी दुनिया के होने की नहीं, उस होने को महसूस करने की है। वह उसे बाहर देखता और भीतर झेलता है। देखना उसकी सामाजिकता और झेलना उसकी निजता है। यह झेलना द्वंद्व रूप में है और सकारण है, क्योंकि आज का वैविध्यमय जीवन विषम है। आज की सभ्यता ह्रासगत, इसलिए आज की कविता में तनाव होना स्वाभाविक ही है। किसी भी युग का काव्य अपने परिवेश से या तो द्वंद्व रूप में स्थित होता है या सामंजस्य के रूप में। नई कविता अधिकतर द्वंद्व रूप में स्थित है। मुक्तिबोध रचनावली खंड 5 पृष्ठ 179। मुक्तिबोध की अधिकतर लंबी कविताएं इसीलिए अनिर्णित स्थिति में खत्म होती हैं। अंधेरे में का वाचक दो टूक कहने का साहस भले ही कविता के अंत तक पहुंचकर जुटा पाता है, लेकिन वह जानता शुरू से ही है कि वर्तमान समाज में चल नहीं सकता। सारे संघर्ष और छटपटाहट का कारण भी यही एहसास है। इत्मीनान से खाकर सोने वाला संसार तो परम सुखी है, दुखी तो दास कबीर हैं, जिनका जागना ही उनके रोने का कारण है। अंधेरे में का नायक भी जागृत है, पर दिन के उजाले में नहीं, इसीलिए किसी का होना उसे केवल सुनाई देता है, आहट की तरह दिखाई नहीं देता, और जब दिखाई देता है तो किसी मनुपुत्र की यह आकृति पहचानी नहीं जाती। वह केवल सर्वनाम रूप में है। कोई, यह कोई कौन है? इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है वाचक के पास। यह संयोग भर नहीं है कि इस आकृति का जो बयान मुक्तिबोध ने किया है वह दर्पण में देखे अपने चेहरे से बहुत भिन्न नहीं है। इसलिए एक हद तक इस मान्यता को बल देता है कि अंधेरे में कविता के नायक से मुक्तिबोध को अलग करके देखना असंभव है। यह प्रश्न अलग है कि यह नायक व्यक्ति मुक्तिबोध है या कवि मुक्तिबोध। जिस अनजाने अनपहचाने चेहरे के सामने कविता का वाचक हतप्रभ है, उसकी समझ जवाब दे जाती है। वही जब प्रकट होता है तो पूरी जादुई करामात की तरह अचानक, किसी तिलस्मिक होह के शिलाद्वार के अकस्मात धड़ से खुल जाने पर रक्तालोक स्नात पुरुष के रूप में, जो साक्षात भी है साथ ही रहस्य भी है, वह प्रियदर्शन आकर्षक रूप होने पर भी विलक्षण शंका और गहन संदेह जगाता है। सारी आशंका और संदेह के बावजूद कवि का सजग अंतस उसकी व्याख्या करता है। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। पूर्ण अवस्था वह निज संभावनाओं निहित प्रभावों प्रतिमाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव। जो पाया नहीं गया वह व्यक्ति और अभिव्यक्ति दोनों एक साथ हैं। एक ऐसा आदर्श जो लक्ष्य की तरह रहस्य साक्षात है, यह ज्ञानवाचक को राहत नहीं पीड़ा देता है। प्रश्न अपनी जगह है ही और पर्याप्त होने के साथ गंभीर और खतरनाक भी हैं। आत्म साक्षात्कार का यह आलोकित क्षण बाहर के गुंजान जंगलात को सह नहीं, अतः अचेतन के अंधियारे खड्डे में गिरना उसकी नियति है। मय के द्वारा निरंतर वह को सिद्ध करने की यह प्रक्रिया कविता के आरंभ में रह रह कर दोहराई गई है। भीत पर फूले हुए पलिस्तर से खिसकती पपड़ियों में बना चेहरा, तालाब की गहराइयों से उभरती कोहरीली मुखाकृति, तिलस्मिक होह में साक्षात रहस्य पुरुष, द्वार पर रह रह कर बजती सांकल, ऐसे न जाने कितने और प्रतीकों के रूप में जो अवसर अनवसर सुविधा का बिना ख्याल किए प्रकट होता रहता है। समस्या उसे पहचानने की नहीं, पहचान कर न पहचानने की है। वाचक की आत्मस्वीकृति है, परंतु भयानक खड्डे के अंधेरे में आहत और छत विछत में पड़ा हुआ हूँ, शक्ति ही नहीं है कि उठ सकूँ जरा भी। यह भी सही है कि कमजोरियों से ही लगाव है मुझको। जो प्रिय है उसी को टालना, उससे कतराना मैं की व्यवस्था है। पहचानने और गले लगाने का अर्थ है खतरों का आह्वान, चुनौतियों का स्वीकार। उस गुरुवत पूर्णतम परम अभिव्यक्ति के इस पलातक शिष्य को डर लगता है ऊंचाइयों से, इसलिए वह विवश है पीड़ाएं समेटे खड्डे के अंधेरे में पड़े रहने के लिए। पर रह रह कर आत्मा में भीषण सतचित वेदना जल उठती है, क्योंकि यह मजबूरी भी तो अपनी जगह है ही कि नहीं नहीं उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा, सहना पड़े चाहे मुझे चाहे जो भले ही। एक ओर मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, और दूसरी ओर अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। पलायन और संकल्प की विरोधी मनःस्थितियों के रूप में जो द्वंद्व काव्य नायक के चरित्र में बद्धमूल है, उसकी परिणति होती है आत्मनिर्वासन की बेचैन अनुभूति में और अंततः आत्मालोचन में। जो बराबर प्रकट अंतर्धान होता रहता है समय असमय अवसर अनवसर, वह कोई और नहीं, आखिर है तो व्यक्तित्व अपना ही, अपने से खोया हुआ, वही उसे अकस्मात मिलता था रात में। जो बराबर प्रकट अंतर्धान होता रहता है समय असमय अवसर अनवसर, वह कोई और नहीं, आखिर है तो व्यक्तित्व अपना ही, अपने से खोया हुआ, वही उसे अकस्मात मिलता था रात में। अपने ही खोए हुए व्यक्तित्व के अकस्मात सामने आ जाने पर जो दुविधा असुविधा और असमंजस पैदा होता है, उसकी जिम्मेदारी बाहरी तंत्र पर तो है ही, वाचक का निजी सोच भी उसमें बराबर का हिस्सेदार है। वह ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं अपने विरोध में खड़ा है। सार्वजनिक घटनाओं की दुनिया में वैचारिक सक्रिय हस्तक्षेप खतरे का कारण हो सकता है, अतः विचारों की मणियों को अवचेतन के गर्त में फेंक देना ही अधिक सुरक्षित रास्ता है। प्रकट होकर वह हृदय को देता है बिजली के झटके, भविष्य का नक्शा दिखाता है। वह जगत का प्रबुद्ध समीक्षक है, विवेक पुंज है, इसलिए दुर्बलमय के लिए असह्य है। स्तंभ शून्य में तैरती है जगत समीक्षा की हुई उसकी, सह नहीं सकता विवेक विक्षोभ महान उसका, तम अंतराल में सह नहीं सकता। पूरी कविता इस दुर्बल जिज्ञासु साधक मय के द्वारा आदर्श रहस्य सरीखे वह को सिद्ध करने के प्रयास और न पा सकने की असफलता असमर्थता के बीच की द्वंद्वात्मकता का बयान है। नामवर सिंह ने इस मय को पूर्णता में कवि समझ लेने की संभावना के विरुद्ध सावधान किया है। वे कविता के मय और वह दोनों में से किसी को कवि का संपूर्ण रूप मानने के पक्ष में नहीं है। उनके अनुसार मय और वह के संवेद रूप से ही कविता के आदर्श अभिप्रेत पूर्ण व्यक्तित्व की सिद्धि संभव है। अधूरेपन के बोध को लिए दिए काव्य नायक के क्रमशः अपने लिए अजनबी होते जाने को रामविलास शर्मा ने एक अत्यंत आत्मग्रस्त चरित्र का लक्षण माना है। ऐसी आत्मग्रस्तता जिसका एक रूप है रहस्यवाद, दूसरा रूप है अस्तित्ववाद। एक बार यह मान लेने के बाद मुक्तिबोध की आत्मचेतस संवेदना के साथ उनके सामाजिक सरोकार का तालमेल रामविलास जी ने यह कहकर बैठाया है कि मुक्तिबोध के आत्मसंवेदन समाज के व्यापकतर छोर छूते हैं। इसका अर्थ है वह रहस्यवाद और अस्तित्ववाद से मार्क्सवाद का समन्वय करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वह समन्वय हो नहीं पाता। नई कविता और अस्तित्ववाद, पृष्ठ 129। कविता में जिस तरह जीवन की कठोर और घोर वास्तविक सच्चाई का लगभग एक दुःस्वप्न की तरह सामना करते हुए वे बारंबार अभीष्ट परिवर्तन की आंद्रजालिक स्वप्निल दुनिया में लौट जाते हैं, उसे देखते हुए ऐसा निष्कर्ष एकदम संगत तो नहीं, पूरी तरह बेबुनियाद भी नहीं कहा जा सकता। अस्तित्ववाद के साथ मार्क्सवाद का समझौता कराने का प्रयास तो स्वयं अस्तित्ववादी चिंतकों ने भी किया था, परंतु रहस्यवादी अनुभव के लिए जिस असाधारण भावभूमि के संस्पर्श की अपेक्षा होती है उसका समन्वय मार्क्सवाद से करना सहज नहीं है। दरअसल अंधेरे में की संवेदना को वादों की पारिभाषिकता से बांध कर देखना समझना कठिन है। कविता में एक ऐसा क्षण आता है जहां पहुंचकर वाचक को लगता है कि रात्रि के श्यामल ओस से छालित कोई गुरुगंभीर महान अस्तित्व महकता है लगातार, मानो खंडहर प्रसारों में उद्यान गुलाब चमेली के, रात्रि तिमिर में महकते हों महकते ही रहते हों हर पल, किंतु वे उद्यान कहाँ है अंधेरे में पता नहीं चलता, मात्र सुगंध है सब ओर पर उस महक लहर में कोई छिपी वेदना कोई गुप्त चिंता छटपटा रही है छटपटा रही है। इन पंक्तियों में किसी ऐसे गुरु गंभीर महान अस्तित्व का एहसास भर है जिसकी व्याप्ति केवल महक लहर की तरह महसूस होती है। इस सुगंध के स्रोत का ठीक ठीक पता नहीं चलता, उसकी तुलना कविरात्रि के अंधकार में अदृश्य महकते हुए गुलाब चमेली के सदाबहार उद्यानों से करता है। यह व्याख्यातीत संवेदन किसी रहस्यानुभूति का नहीं, उस आशावाद का संकेत करता है जिसे आत्मभर्त्सना और आत्मालोचन की कटीली राह से गुजर कर काव्य नायक ने पाया है। इस प्रसंग से ठीक पहले वह अपने दायित्व को पहचानता है अपराध बोध के साथ, मानो मेरे कारण ही लग गया मार्शल लावा, मानो मेरे कारण ही दुर्घट हुई यह घटना, सारी समस्या तो समझौतावादी निष्क्रियता की है, मानो मेरी निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया। सुगंध का स्रोत कहाँ है, इसको पहचानने में बाधक अंधेरा है जो भीतर और बाहर दोनों जगह है। पहचान के लिए अंधेरे का छटना जरूरी है। प्रकाश विकीर्ण करने वाले विवेक और अनुभव के रत्नमणियों की ढेरी तो अवचेतन की गुफा में दबी केवल उसी की बेडौल भीतों को ही आलोकित करती रहती है। वे गुहावासी होने के लिए अभिशप्त हैं, गुहावास उन्हें दिया गया है, अन्यथा बच्चे भीख मांगते। खैर, इसीलिए जो रामविलास शर्मा की दृष्टि में आत्मग्रस्त है वह नामवर सिंह के राय में आत्मनिर्वासित है। उसकी तथाकथित आत्मग्रस्तता फ्राइडियन न्यूरोसिस विकृति मानसिक रोग नहीं है। इस आत्मनिर्वासित बेचैन व्यक्तित्व को सामाजिक आर्थिक दबावों ने वैसा होने के लिए विवश किया है। वह आत्मकेंद्रित निपट अंतर्मुख व्यक्ति नहीं है। उसकी निजी दुनिया के साथ सार्वजनिक घटनाओं की दुनिया बराबर कारण कार्य संबंधों से जुड़ी है। जितना ही तीव्र है द्वंद्व क्रियाओं घटनाओं का बाहरी दुनिया में, उतनी ही तेजी से भीतरी दुनिया में चलता है द्वंद्व की फिक्र से फिक्र लगी हुई है। इसीलिए उसे समस्याओं की चिंता के साथ संभावनाओं का एहसास है। शहर का जुलूस उसे बेचैन भी करता है और आतंकित भी। क्रांति का स्वप्न उसमें गहरा दायित्व बोध जगाता है। बाहरी और भीतरी दुनिया चेतन और अवचेतन के बीच अटूट संबंध लगातार बना रहता है, पर इन दोनों स्तरों पर वे जिस जादुई करामात कहीं कहीं नितांत निजी शब्द और प्रतीक व्यवस्था के माध्यम से संतरण करते हैं वह एक साथ आंद्रजालिक और वास्तविक काल्पनिक और ठोस होने का बोध जगाता है लगभग चमत्कारिक ढंग से। ये दोनों रूप किसी क्षण विशेष में या किसी एक बिंदु पर समन्वित असमंजित नहीं होते। जब ऐसा दुर्लभ अवसर आता है तो एक दूसरे से अनजाने या समझ बूझ कर मुँह चुराता है, या फिर होने लगी बहस और लगने लगे परस्पर तमाचे। इस तमाम तनाव को झेलता हुआ यह काव्य नायक हर पल पीछा करते हुए हिंसक शक्तियों के संकट तले जीना चाहता है। मौत का खतरा उठाकर भी उसके मन में दुविधा या सस्पेंस नहीं, गहरा अपराध बोध है। दरअसल उसकी यात्रा संकट बोध, उस संकट को पैदा करने वाली शक्तियों की पहचान, आतंक, आतंक का सामना करने के संकल्प से उत्पन्न तनाव, आत्मालोचन और आत्मभर्त्सना, क्रांति स्वप्न की राह से गुजरती हुई अंततः रात के अंधेरे में सुबह की सुनहली धूप में आत्माभिज्ञान पर जाकर रुकती है, एक बार फिर नए सिर से शुरुआत करने के लिए। कविता के आरंभ में जो रक्तालोक स्नात पुरुष साक्षात रहस्य रूप था, वह जनयूथ में प्रकट तो होता है पर झलक दिखाकर ओझल हो जाता है। पर इस बार संकल्प जगाकर जिसका स्वर संभावनापूर्ण नहीं, एक हद तक निश्चयात्मक है। कविता का नायक जिंदगी के अंधेरे कमरों से निकलकर जिस सुनहली धूप में उस रहस्य पुरुष का साक्षात्कार किसी अद्भुत लोकोत्तर सत्ता के रूप में नहीं, भीड़ के सामान्य जन के रूप में करता है, उससे कविता में व्याप्त अनिश्चय का अंत तो होता है, द्वंद्व का नहीं। पुकारने के लिए उठी बाँह उठी ही रह जाती है और वह जन एक बार फिर खो जाता है। पर इस बार अंधेरी रातों में नहीं, दिन के उजालों में, भीड़ के बीच। आत्मगत अमूर्त अवधारणा की यह मूर्त वस्तुगत सिद्धि है। इस बार का साक्षात्कार मौत की सजा सरीखा नहीं है, नहीं वह संकेतों इशारों में सामने आकर पहचान बताता और समझाता है। भीड़ का हिस्सा होने पर भी उसकी पहचान स्पष्ट है, वही जन जिसे मैंने देखा था गुहा में। वह जैसे एकाएक आंखों के सामने दिखता है, वैसे ही अकस्मात फिर खो जाता है, पर इस बार अंधेरे में नहीं बल्कि किसी जन यूथ में। पुकारने के लिए खुला मुंह और उठी हुई बांह लिए दिए वाचक एक बार फिर अनखोजी नित समृद्धि का वह परम उत्कर्ष खोजने के लिए विवश है। पठार, पहाड़, समुन्दर सब कहीं, पर वह तो स्वयंभू है, अनिवार्य है, आत्मसंभवा है। अतः खोज और उपलब्धि के बीच का अंतराल दुर्लंघ है और खोजने की प्रक्रिया अंतहीन, यही इस कविता का द्वंद्व है। सुविधा भोगी, मौका परस्त, अपराध बोध से ग्रस्त मध्यवर्ग के मानव चरित्र का वर्तमान है यह। जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करने की असमर्थता और बदलने की अक्षमता के बीच अपनी निजता को पहचानने और परिभाषित करने में अपने को पूरी तरह असमर्थ पाना एक ऐसी पीड़ा है जिसने उसे बीचोंबीच चाक करके खुद अपने खिलाफ खड़ा कर दिया है। यह अनुभव जिस ठोस वस्तु जगत के माध्यम से व्यक्त होता है, उस घटनास्थल में गलियां हैं, सड़कें और चौराहे हैं, जीवन की पूरी गतिविधि है। संभावित क्रांति है, दमन है, सैनिक शासन और मार्शल लॉ है। मुक्तिबोध के शब्दों में भाव का वस्तुमूलक आकलन है, भाव का विभावन व्यापार ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है। यह बात अलग है कि जो स्थितियां घटित होती या होती प्रतीत होती हैं, उनका माध्यम स्वप्न है, एक ऐसा इंद्रजालिक दुःस्वप्न जो बेतरह मानवीय और ठोस है, दृश्य रूप, जिसके बीच वाचक रह रहकर समझ न पाया कि चल रहा स्वप्न या जागृति शुरू है। खुद अपने लिए अजनबी हो जाने के सामाजिक कारणों का वह मृत्यु दल की शोभा यात्रा और नगर पर लगे सैनिक शासन और मार्शल लॉ के रूप में साक्षात्कार करता है। इस भयावह स्थिति से बचाव का एक ही मार्ग है, संभावित जनक्रांति का स्वप्न। इन दो छोरों के बीच काव्य नायक निरंतर भाग रहा है, भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़। इससे पहले ही वाचक एक बार भागता है, हर बार यह भागना निरर्थक नहीं है, हर मोड़ पर एक अनुभव है और उस अनुभव की पड़ताल और व्याख्या भागने की प्रक्रिया में उसकी मुठभेड़ तिलक और गांधी दोनों से होती है। तारों के बीच उसे तालस्ताय का चेहरा झांकता दिखाई देता है, क्योंकि वे ही तो अनलिखे मेरे उपन्यास का केंद्रीय संवेदन है। कविता का ठोस मानवीय संसार में गरीबों की बस्तियां हैं, अनेक समान धर्मा साथी कलाकार हैं, इस सबके बीच जवाबदेही अपनी जगह है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, इस प्रश्न के उत्तर में आत्माधिकार और अपराध बोध है। अरे मर गया देश, जीवित रह गए तुम। एक सिरफिरा पागल कलाकार आत्मोद्बोध में गान गाता है और दूसरा असंग व्यक्तित्व अचानक झोंके में आकर कुछ ऐसा कर गुजरता है कि मारा जाता है। खुद काव्य नायक स्क्रीनिंग और क्रॉस एग्जामिनेशन की यातनामय प्रक्रिया से गुजरता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह यात्रा कितनी तनावपूर्ण और दुखदायी होगी। चांद का मुंह टेढ़ा है कि भूमिका में श्रीकांत वर्मा ने कहा था, मुक्तिबोध जिंदगी में एक एक स्नायु के तनाव को एक बार जीवन में और दूसरी बार अपनी कविताओं में जीते थे। पृष्ठ 7-8। मुक्तिबोध के लिए दोनों स्तरों पर इस तनाव को जीने का अर्थ है दोनों का एकमेक हो जाना। उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत कला कर्म में अपने मन की धारा को न केवल तीव्र और गहन करना पड़ता है, वरन यह भी कि उस धारा को अत्यंत संयमित, नियंत्रित और एक विशेष दिशा की ओर उन्मुख करना पड़ता है। जब कलाकार ऐसा करता ही है तो ऐसी स्थिति में जबकि उसके हृदय के दो भाग जो भीतर से निगूढ़ रूप से संबद्ध हैं क्योंकि वे एक ही लक्ष्य की पूर्ति के लिए दो हुए हैं, मेरा मतलब भोक्ता सृष्टा मन से है, हो ही गए हैं, तो सृष्टा मन संवेदनात्मक उद्देश्यों के अनुसार ही नहीं वरन उससे अनुप्राणित होकर अधिकाधिक जीवन तत्व अपने आप में क्यों न समेटे। संक्षेप में वह किसी भी कलाकृति में अपना पूरा व्यक्तित्व, जीवनानुभव संपन्न, ज्ञानानुभव संपन्न, अपना पूरा आत्मैक क्यों न क्रियाशील करे और वह पूरे क्षण के भीतर से सारा वैविध्यपूर्ण वास्तविक जीवन दर्शन क्यों न करे। रचनावली उद्धरण चिन्ह बंद, रचनावली 5 पृष्ठ 160। कहने का तात्पर्य यह है कि मुक्तिबोध के लिए भोक्ता और सृष्टा मन के बीच वैसा द्वैत नहीं है जैसा कुछ सौंदर्यवादी मानते हैं। जीवनानुभूति और सौंदर्यानुभूति के बीच वैसा अंतराल न मानने के कारण उनकी एक समस्या जीवनानुभूति की अभिव्यक्ति की है। इसीलिए अंधेरे में व्यक्ति के साथ अभिव्यक्ति की खोज की कविता है, यानी आज के मनुष्य के बारे में कविता और आज की कविता के बारे में कविता। वर्तमान समाज व्यवस्था ने व्यक्ति को निर्वासन ही नहीं दिया, उसके लिए पूर्ण व्यक्तित्व की, पूर्ण मनुष्यता की प्राप्ति की समस्या पैदा कर दी है। कलाकार के लिए यह समस्या दोहरी है, वह सृजनात्मक शक्ति के लिए घातक स्थिति पर विजय प्राप्त करके सार्थक काव्य सृष्टि कैसे करे। परिवेश और परिस्थिति मनुष्य के व्यक्तित्व, उसकी मनुष्यता और उसकी सृजनात्मक प्रतिभा दोनों के लिए घातक है। बाधा बाहर और भीतर दोनों स्तरों पर है। सामाजिक अव्यवस्था और असंगति से जिस भयावह रहस्यमय वातावरण की सृष्टि होती है उसमें बाहरी स्तर पर तो अंधेरा है ही, सूक्ष्म स्तर पर व्यक्ति मन की निविड़ता ने एक अंडरग्राउंड संसार रच लिया है जिसमें मध्य वर्ग के चेतन समझौतावादी और अर्धचेतन आदर्शवादी निरंतर संघर्षरत हैं। आज का मनुष्य अंधेरी शक्तियों के मायाजाल की गिरफ्त में है। क्या करूं, किससे कहूं, कहां जाऊं, उसका प्रश्न है जिसका कोई दो टूक उत्तर नहीं है उसके पास। प्रश्न एक और भी है, कैसे कहूं, क्योंकि, किंतु असंतोष मुझको है गहरा। शब्दाभिव्यक्ति अभाव का संकेत, काव्य चमत्कार उतना ही रंगीन परंतु ठंडा। मेरे भी फूल हैं तेजस्क्रिय पर अतिशय शीतल। समस्या तेजस्क्रिय फूलों में अंगार भरने की है। गंभीर आवेश भी है और अथाह प्रेरणा स्रोत का संयम भी नहीं है तो अभिव्यक्ति का समुचित माध्यम। अरे, इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा। कहना ना होगा कि ये पत्थर फूल जमीन से चुने गढ़े गए हैं, दूर क्षितिज पर बिजली की नंगी लताओं से झर रहे फूलों के समतुल्य उपकरण बनाने के इरादे से, पर राह नहीं मिलती। परिणामतः मस्तक कुंड में जलती सचित वेदना सच्चाई व गलती, मस्तक शिराओं में तनाव दिन रात। यह संयोग नहीं है कि अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने का संकल्प ठीक इसी प्रसंग के बाद आता है और साथ ही शुरू होता है भागने का अटूट सिलसिला। इस बार भागना पूर्व प्रसंगों से भिन्न है। लक्ष्य की दिशा में काव्य नायक की आखिरी दौड़ है। इसी बीच उसे बोध होता है, मेरे ही विक्षोभ मणियों को लिए वे, मेरे ही विवेक रत्नों को लेकर बढ़ रहे अंधेरे में सोत्साह, किंतु मैं अकेला, बौद्धिक जुगाली में अपने से दुकेला। कोई चुपचाप एक पर्चा जेब में डाल जाता है जिसमें चमकता है आशय मनोज्ञ मुखों से पारिजात पुष्प महकते। परिणामतः पहले एक बार किए गए संकल्प को फिर कुछ इस रूप में दोहराता है। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं, वर्तमान समाज में चल नहीं सकता। पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वतंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता मुक्ति के मन को, जन को। इसके बाद बचा रहता है काल्पनिक क्रांति चित्र। कवि ने इस संभावित स्थिति को सभी पहलुओं से देखा है, पूरे मानवीय सरोकार के साथ एक ऐसी घटना के रूप में जिसके बाद अब युग बदला है वाकई। ऐसा युग जिसमें मेरे युवकों में होता जाता व्यक्तित्वांतर, यह स्थिति आकांक्षित ही हो सकती है, यथार्थ नहीं। रह रहकर कवि याद दिलाता है एकाएक फिर स्वप्न भंग बिखर गए चित्र की, मैं फिर अकेला। पर इस बार स्वप्न का टूटना इस एहसास के साथ है कि मेरे इस कमरे में आकाश उतरा, मन यह अंतरिक्ष वायु में सिहरा। आत्मनिर्वासन से आत्मालोचन और अपराध भावना की गहरी पीड़ा से गुजरता हुआ काव्य नायक अंततः आत्मबोध के जिस बिंदु तक पहुंचता है उसमें कोई प्रकट तार्किक क्रम नहीं है। कम से कम वह सहज रूप से लक्षित नहीं किया जा सकता। उसकी इस यात्रा का कोई सुनिश्चित भूगोल नहीं है। यह यात्रा जिस अंधेरी दुनिया में तय की गई है उसमें उतरना ही दिखाई पड़ता है जितना कवि दिखाना चाहता है। लगभग स्पॉट लाइट डालकर आसपास का बाकी संसार अंधकार में गर्क है। जो दिखाई देते हैं वह भी एकाएक अचानक अकस्मात एक तिलस्म दुःस्वप्न की तरह। शमशेर ने सही कहा है कि उनकी कविताओं के अंश जासूसी उपन्यासों के अंशों की याद दिलाते हैं। यह फैंटेसी शिल्प को अपनाने का कारण भी है। चारों ओर घटित होती राजनीतिक घटनाएं हैं जिन्होंने विभाजित अधूरी जिंदगी जीने की मजबूरी पैदा कर दी है। दमनकारी अदृश्य शक्तियां अंधेरे में घेरा डाले हैं। पूरा माहौल मानव मनुष्यता के विरुद्ध विराट षड्यंत्र रचने में संलग्न है। कवि की विडंबना यह है कि जिस षड्यंत्र को रचने में उसकी जिम्मेदारी है, वह खुद उसी का शिकार भी है। इस पूरी वस्तुस्थिति को जांचने परखने के लिए वह एक यथार्थ प्रतीकात्मक रूप धारण करने के लिए विवश है। फैंटेसी शिल्प उसकी अपेक्षा ही नहीं, विवशता है। मुक्तिबोध ने एक साहित्य की डायरी में अनुभव के फैंटेसी में रूपांतरण को सृजन प्रक्रिया की अनिवार्य कड़ी बताते हुए इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का विस्तार से विश्लेषण किया है। फैंटेसी शिल्प उनके लिए वैकल्पिक नहीं, अपरिहार्य है। रामविलास शर्मा ने ठीक कहा है कि यथार्थ को स्वप्न चित्रों में बदले बिना वह मानो उसे समझ नहीं सकते। नामवर सिंह को उनकी फैंटेसी की विविधता और व्यापकता आकर्षित करती है, इसलिए और भी कि वे फैंटेसी का उपयोग यथार्थ की परतों के उद्घाटन के लिए करते हैं, कल्पना विलास के लिए नहीं। कहने का तात्पर्य है कि उनका शिल्प कल्पनापेक्षी होने पर भी यथार्थ से अभिन्न रूप से जुड़ा है। इस शिल्प ने वास्तविकता के प्रदीर्घ घटनात्मक ब्यौरे के चित्रण से बचाव का रास्ता मुहैया किया है ही है, साथ ही वर्णनों में मितव्ययता और सघनता आ गई है। अनुभव को फैंटेसी में रूपायित करने का परिणाम होता है उसे अपने से विलग करके मूर्त विभावन व्यापार के माध्यम से संप्रेष्य बनाना। दिलचस्प बात यह है कि ऐसी स्थिति में रचनाकार की हैसियत खुद तटस्थ प्रेक्षक की ही हो जाती है। उसका अनुभव उसके सामने ठोस बाहरी मूर्त घटना या स्थिति के रूप में आ खड़ा होता है। भोक्ता मन और सृष्टा मन रूबरू होकर रचना कर्म को साधते हैं यथासंभव वस्तुनिष्ठता के साथ। रामविलास शर्मा ने इस रचना पद्धति का मिलान काफ्का की कला से किया है। इस कला की विशेषता है कि नियमित विचारों और भावनाओं के लिए पात्रों और वस्तुओं को निश्चित करना। मुक्तिबोध को कि फैंटेसी कहने को स्वप्न, पर वास्तव में एक ऐसी प्रतीक व्यवस्था है जिसका गहरा संबंध जीवन की ठोस और कठोर सच्चाई से है। इसीलिए वे अक्सर बिंबों का प्रयोग करके अनुवर्ती व्याख्या के माध्यम से उन्हें स्पष्ट करते हैं। खोह की बेडौल झिलमिलाती भीतों में तेजस्क्रिय रत्नमणियों को विलुब्ध नेत्रों से देखते देखते इस दृश्य की वास्तविकता उन पर प्रकट होती है। अकस्मात पाता हूँ, अकस्मात दीप्ति में वाले इत रत्न वे नहीं है। अनुभव वेदना विवेक निष्कर्ष मेरे ही अपने यहाँ पड़े हुए हैं। विचारों की रक्तिम अग्नि के मणि वे, प्राण जलप्रपात में घुलते हैं प्रतिपल। अकेले में किरणों की गीली है हलचल, गीली है हलचल। रह रहकर चेतन और अवचेतन के बीच यह संवाद उनकी कविताओं में प्रायः दिखाई पड़ता है। मन के रत्नों को अवचेतन के गड्ढे में धसाने का बोध उनका बीज भाव है। जो वो काव्यात्मक फणिधर में भी उन्हें इस बात का एहसास हुआ था, चुपचाप धंसाए गए छिपाए गए रत्न मन के जन के, वो जो मूल्य सत्य हैं इस जग के परिवर्तन के, विविध असुविधाओं के कारक होने से नित उपेक्षित भूमि में फीके। असुविधाओं का भय और परिवर्तन की कामना के बीच करणीय को अंजाम देने की असमर्थता के बोध से निर्मित त्रिशंकु स्थित मुक्तिबोध की तमाम कविताओं की तनावपूर्ण बनावट की कारक है। यही बद्धमूल द्वंद उनकी लंबी कविताओं को नाटकीय विधान देता है। मैं से आरंभ होकर मैं पर खत्म होने वाली उनकी इस कविता में पूरे जीवन जगत की परिक्रमा न प्रगतात्मक लय में तय की गई है और न समाख्यानात्मक व्यौरे से गुजरकर। कविता में लोग हैं, स्थितियां हैं, घटनाएं हैं, पर कथानक विधान नहीं है। संपूर्ण वस्तु विन्यास दृश्यों में रूपांतरित हो गया है। कविता के 8 खंड किसी नाटक के 8 दृश्यों के समान है। अंधकार के विराट दृश्य पटल पर सिनेमेटोग्राफी की तकनीक से घटनाएं एक के बाद एक चित्र के रूप में प्रक्षेपित की गई हैं। पूरी घटनावली के बीच कविता का केंद्रीय चरित्र मैं और वह में विभक्त होकर बराबर किसी न किसी रूप में उपस्थित है। वह स्वेच्छया अत्यंत नाटकीय शैली में कभी अंतर्धान हो जाता है और कहीं प्रकट, जबकि मैं हर घटना का स्थिर साक्षी रहकर स्थिर और गति के द्वंद्व को झेलने के लिए अभिशप्त है। दरअसल वह का रह रहकर प्रकट होना इस स्थिर एक रास्ता को नाटकीय ढंग से खंडित करता है। यह आकस्मिक नहीं सुनियोजित है कि कविता के अधिकांश घटना प्रसंग सहसा एकाएक अचानक अकस्मात घटित होते हैं। सुविधा कविता के पाठक आलोचकों ने तरह तरह से इस बात को दोहराया है कि मध्य वर्ग के सुविधाजीवी समझौतावादी आदर्श जीव मन का संघर्ष ही अंधेरे में की काव्य वस्तु है। इस आत्मनिर्वासित आधुनिक मनुष्य के विभाजित व्यक्तित्व के संघर्ष का एक आयाम और है, कविता का मैं जिसे पहचानने और पाने के लिए व्यग्र है, उसी की पहचान और उपलब्धि की संभावना उसके लिए भय का कारण भी है। भय और प्रीति का यह द्वंद्व इस आत्मनिर्वासित मन का मुख्य आकर्षण है। खोज और उपलब्धि के बीच की इस दुविधा या सस्पेंस को नामवर सिंह ने कविता की अद्भुत नाटकीयता का श्रेय दिया है। मुक्तिबोध के लिए यह कथ्य का दबाव है, मात्र शैलीगत प्रयोग नहीं। इसीलिए कविता के मोड़ लेने पर वे शैली में यथावश्यक परिवर्तन कर लेते हैं। आत्मसंवाद या दो के बीच संवाद के माध्यम से बढ़ती कविता में आत्मभर्त्सना का प्रसंग उपस्थित होते ही कविता का कलाकार गीत की टेक का सहारा लेकर अपनी जवाबदेही करता है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। टेक का प्रयोग कविता में दो बार और हुआ है, पर दूसरे उद्देश्य से, गीत की व्यंजना और दोहराव के माध्यम से कथ्य पर वजन देने के लिए। जान हथेली पर लिए काव्य नायक भाग रहा है, भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़। भागना बराबर है और अपनी जगह है। भागने की इस अनवरत प्रक्रिया में कई मोड़ हैं और हर मोड़ पर एक नई दृश्य स्थिति। टेक की ये पंक्तियां इसी तथ्य की व्यंजना करती हैं। इसी तरह एकाएक हृदय के धड़क कर रुक जाने के बाद जब क्रांति का स्वप्न चित्र प्रस्तुत होता है, तो तेजी से परिवर्तमान दृश्यों के बदलाव को वे मानो टेक की पंक्तियों से रेखांकित करते चलते हैं। विद्रोह की आग और दमन की गोली के बीच चोली दामन का साथ है, इसलिए एक तरफ यह दोहराना जरूरी है कि कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। वह लगे हाथों यह जताते चलना भी जरूरी है कि स्थिति हर बार वही नहीं है। आरंभ होता है इस बोध से कि चढ़ गया उर पर कहीं कोई निर्दयी, तो सिलसिला आगे बढ़ता है इस एहसास के साथ कि नपुंसक श्रद्धा सड़क के नीचे की गटर में छिप गई। पर सक्रिय क्रांति से पहले जरूरी है विश्व की मूर्ति में आत्मा ही ढल गई। क्रांति की सकर्मकता में संदेह न हो, इसलिए आश्वस्त करना जरूरी है कि यह कथा नहीं है, यह सब सच है। हाँ भाई, जब क्रांति कथा न रहकर वास्तविकता हो जाए, तो यह आत्मविश्वास स्वाभाविक है कि अब युग बदला है वाकई। इस बदले युग की पहचान है युवकों में होता हो व्यक्तित्वांतर, जिसके परिणाम स्वरूप द्रुत वेग बहती है शक्तियां निश्चय। कहने का तात्पर्य है कि गीत की टेक वाली शैली का प्रयोग करने पर भी इस कविता की संरचना गीत की तरह आवर्तमयी नहीं है, बल्कि रेखीय है, विकासशील है। मुक्तिबोध की कविताओं का शिल्प काफी समय तक अपने मौलिक अपरिचित विन्यास के कारण संप्रेषण की कठिनाई पैदा करता रहा। उन्होंने सार्वजनिक जीवन की घटनाओं के साथ अपनी निजी दुनिया का जो सार्थक संबंध कायम किया, उसे उतनी ही निजी प्रतीक व्यवस्था के माध्यम से व्यक्त किया। विशेषता उनके शब्द प्रयोग में उतनी नहीं जितनी संयोजनाओं में है। निकट अतीत से सुदूर अतीत तक अनेक कालक्षणों को उन्होंने समकालिक यथार्थ में केंद्रित कर कविता को कालगत आयाम दिया है। समकालीन जीवन को वे उसकी संपूर्ण विविधता, जटिलता और अनेक स्तरीयता के साथ तदनुरूप मुहावरे के माध्यम से चरितार्थ करते हैं। उन्हें किसी भाषा से परहेज नहीं है। महत्वपूर्ण है संदर्भ और उसकी अपेक्षा। अंग्रेजी के प्रोसेशन, स्क्रीनिंग, रेडियो एक्टिव, हाइफन, टैश, रेल एक्सीडेंट, स्प्लिट सेकेंड जैसे बातचीत में प्रयुक्त होने वाले शब्दों से लेकर प्रसंग के अनुरोध से क्रॉस एग्जामिन हिम थॉरली मिस्टर गुप्ता जैसे आदेशात्मक वाक्य व्यथा स्थान मौजूद हैं। मराठी के संस्कार से उनकी भाषा में नक्शा, कंदील, गजर, हकाल, दिया तो अनायास ही चले आए हैं। कोहरीला, किरगिली जैसे विशिष्ट प्रत्यय प्रयोग भी दिखाई पड़ते हैं। बातचीत के स्वाभाविक मुहावरे की रक्षा के लिए वे उर्दू की तर्ज अपनाने से नहीं चूकते। फिजूल है इस वक्त कोसना खुद को, और जरूरत पड़ने पर वे तेजस्क्रिय सचित वेदना भास्कर जैसे प्रयोग खुद गढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य है कि विषय के अनुसार उनकी भाषा विविध रूप संरचनाएं ग्रहण करती हैं। अक्सर एक प्रलंबित वाक्य के साथ दूसरा छोटा वाक्य लगाकर वे बात पूरी करते हैं। सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक, चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप हैं, उनके ख्याल से यह सब गप है, मात्र की वदंती। प्रसंग आने पर यही शैली संवाद सुलभ सरल वाक्य विन्यास में रूपांतरित हो जाती है। किंतु न जाने क्यों खुश बहुत हूं, जिसको न मैं इस जीवन में कर पाया वह कर रहा है। जरूरत पड़ने पर ऐसी प्रवाहपूर्ण शैली में वे घटनाओं और उनकी प्रतीति का वर्णन करते हैं, और तब प्रतीत हुआ भयानक गहन मृतात्माएं इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती परंतु दिन में बैठती हैं मिलकर करती हुई षड्यंत्र विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों में, घरों में। सामान्यतः मुक्तिबोध की शैली में अलंकृति का अभाव है, किंतु सूक्ष्म अर्थव्यंजना के लिए उन्होंने बिंबधर्मी भाषा का सहारा लिया है। ऐसा प्रायः उन स्थलों पर हुआ है जहां वे अंतर्मन के सूक्ष्म संवेदनात्मक विवृत्ति करते हैं। उदास मटमैला मन रूपी वाल्मीक चल विचल हुआ सहसा, अथवा जहाँ वस्तु स्थिति में इंद्रिय बोध के परे कल्पनाश्रय संवेदन उनका लक्ष्य होता है, सांवली हवाओं में काल टहलता है, ऐसे प्रसंगों में उनकी भाषा अर्थ नहीं बिंब ग्रहण करने लगती है। कहने का अर्थ यह नहीं है कि मुक्तिबोध की भाषा सामान्य अर्थ में सज्जापूर्ण अलंकृत या प्रांजल भाषा है। पंत और अज्ञेय की भाषा किसी खरादी तराशी भाषा तो वह नहीं ही है। कुल मिलाकर उनकी भाषा अनगढ़ तेजोदीप्त भाषा है, इसमें नदी का कलकल निनाद व मंथर गति नहीं, पहाड़ी निर्झर का सा दुर्धर्ष उद्दाम वेग है, जो राह में आने वाले पत्थर ढोकों और मिट्टी के किरगीले कणों को समेटे चलता है, अपनी राह खुद बनाता हुआ। इसीलिए नंदुलारे वाजपेयी को उनकी भाषा में लय और संगीत की अपेक्षा चिल्लाहट सुनाई पड़ती है। श्रीकांत वर्मा ने सही कहा था कि मुक्तिबोध ने संगीत से पैदा शून्य को तनाव से भरा है। प्रश्न अपनी जगह है कि क्या यही वह परम अभिव्यक्ति नहीं है? मुक्तिबोध को जिसकी खोज थी वह परम भले ही न हो, आत्मसंभवा स्वयंभू निश्चित रूप से है। निबंध समाप्त।